मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 9 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथी दोस्तों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं वीरेश कुमार, आप वेल्लोर तमिलनाडु से हैं, अंशिता मेघराजानी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, नरवर सिंह मैदा झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं, उपकार कुमार पलामू झारखंड से, अपराजिता मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, सोनाली सिंघल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, सुनील कुशवाहा गुना मध्य प्रदेश से, सावन कन्नौजे बरवानी मध्य प्रदेश से और मनमोहन राजवंशी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो वीरेश, अंशिता, नरवर सिंह, उपकार, अपराजिता, सोनाली, सुनील, सावन और मनमोहन, आप सभी नौ साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी सूचना है और यह सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खासकर हमारी जो 11 मार्च से और अभी 25 मार्च में जो बैच, सातवां बैच जो हमारा लगना है, उसमें आने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अभी वो फेंस पर खड़े हैं। उनको लगता है कि आना चाहिए, फिर लगता है कि नहीं आना चाहिए, जाना चाहिए, फिर उनको लगता है कि चलो अगले बैच में जाना चाहिए, फिर उनको लगता है कि नहीं इसी बैच में कवर कर लेना चाहिए, फिर वो सोचते हैं कि चलो 10 दिन बाद रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, 5 दिन बाद रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, अभी तो बहुत वक्त बचा हुआ है। तो इस तरह के उलझाव में, द्वंद में वो फंसे हुए हैं। उनके लिए एक सूचना है और सूचना मात्र ये है कि अभी जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन्हें जिन्होंने करा लिया है उनको मालूम है कि अभी रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये डिस्काउंट भी कम नहीं बल्कि 2000 रुपए का डिस्काउंट है। टोटल फीस में से आप समझिए कि 2000 रुपए का डिस्काउंट मायने रखता है। चलिए जो भी हो, लेकिन एक डिस्काउंट अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। तो मुझे यह सूचित करने के लिए कहा गया है कि अब बहुत थोड़ी सी डिस्काउंटेड सीट्स बची हैं, थोड़ी सी सीट्स बची हैं। तो जो स्टूडेंट इस डिस्काउंट का फायदा लेना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, वे अब इस डिस्काउंट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतलब मेरी व्यक्तिगत रूप से सलाह है कि उन्हें फिर देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंततः लाभ की स्थिति को छोड़ने के बारे में किसी को भी कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। तो मित्रों, यदि आप क्लास में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सही समय है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में विचार करें। अब मैं आता हूं मित्रों मुख्य विषय पर, और आज मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग दलित नेतृत्व पर कुछ बातें करेंगे। दलित नेतृत्व, हालांकि वक्त बहुत कम इसके लिए मिलेगा क्योंकि मेरे पास आज बातें करने के लिए न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत बहुत सी दूसरी चीजें हैं। दोस्तों, मैं पहले न्यूज पर आता हूं। आपको कल मैंने बताया था कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। न्यूज में आपने सुना होगा कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो न्यूज में चीजें आई हैं, 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये बकायदे जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्लस साइबर सिक्योरिटी, ये आपके सिलेबस में है सिविल सर्विस में और हमेशा एक प्रश्न तो इस पर पूछा ही जाता है। प्रश्न बहुत आसान किस्म का होता है, बहुत ही व्यावहारिक होता है, लेकिन अगर आप बिना कंटेंट के अपने मन से ही सीधे सीधे चीजें लिख देंगे, दिमाग से लिपापोती करके, तो उत्तर तो आपका लिखा जाएगा लेकिन जितने नंबर मिलने चाहिए उतने नंबर मिलने से आप वंचित हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जो 3 मुख्य बातें कही हैं उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये तीनों अपने आप में 3 प्रश्न बनाते हैं। पहला, उन्होंने कहा कि राज्यों को आपस में सूचना का आदान प्रदान करना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से जाइए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप सोचिएगा। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में बताऊं। इसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इस बार भी प्रश्न आया, मतलब पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पिछली बार स्पेशली कहा था कि इस बार परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, और आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने इस पर न केवल प्रेस क्लिपिंग्स ही प्रोवाइड किए थे बल्कि करेंट कंटेंट में भी इस पर सामग्री दी थी, साइबर सिक्योरिटी, और तीसरा सोशल मीडिया को लेकर के। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की चर्चा बहुत अधिक होने लगी है, इसको भी मैंने पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था और पिछले साल इस पर भी प्रश्न आया था, और ये तीनों बिंदु अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में उठाए हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। मित्रों, जो सेकेंड पॉइंट है वो है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के अभी जो बात चल रही है, जो बहस चल रही है, आप देख रहे हैं कि आधार संस्थान से जो थोड़े से डेटा बाहर आ गए थे उसको लेकर के एक संकट की स्थिति बनी है, और सरकार ने कहा है कि नहीं, सरकार पूरी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति कटिबद्ध है। इसको लेकर के मैं आपको एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे देख लीजिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता पर वैसे भी हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं ना, तो कुछ फैक्ट हम अपने दिमाग में रट लेते हैं, जैसे हमें अपना नाम याद रहता है ना, उसी तरीके से वो भी चीजें याद हो जाती हैं। तो जब भी अभिव्यक्ति की या स्वतंत्रता का अधिकार, कह लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार है, सच ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, और आप ज्यादातर देखेंगे पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होते हैं, जनहित याचिकाएं, इसी के तहत दायर की जाती है ज्यादातर, तो वो है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। और जब हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं तो उस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत फिर 6 तरह की स्वतंत्रताएं आती हैं, 6 तरह की स्वतंत्रताएं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। और उन 6 तरह की स्वतंत्रताओं में फिर से एक स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जब आप उसकी लिस्ट देखेंगे तो उसमें 10 स्वतंत्रताओं की लिस्ट है, जिसमें दूसरा नंबर है क्लियर कट प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो याद रखिए कि वो आपको 100% स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। उन प्रतिबंधों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप देश की एकता संप्रभुता को खतरे में डालने वाले चीजों के अभिव्यक्त नहीं कर सकते, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यदि लग रहा है कि मेरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से विदेशी राज्यों के साथ हमारे जो मित्रतापूर्ण संबंध है वो खराब हो रहे हैं तो उस पर उस प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल 100% फ्री नहीं है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मित्रों, आज के अखबारों में भी आपने देखा होगा, न्यूज में भी है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 377 है, जो समलैंगिकता से संबंधित जो दंड विधान है हमारे यहां, उसकी याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार की है, और अब इन्होंने इस विषय को संविधान की बड़ी पीठ को सौंप दिया है कि ये जो समलैंगिकता है, समलैंगिकता को अपराध माना जाए न माना जाए, किस तरह से माना जाए, इस पर अब हमारी संविधान पीठ विचार करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप देख रहे हैं कि समाज किस तरीके से तेजी के साथ बदल रहा है, और बहुत जरूरी है कि बदलते हुए समाज के साथ हमारे नियम कानूनों में भी बदलाव हो, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है, आज के अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि समय के डिमांड के हिसाब से हम भी बदलने को तैयार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ समय पहले अपराध बना घोषित किया है, वो भी याचिका की सुनवाई के दौरान, कि नहीं नहीं ये अपराधी है और अगर इस पर कुछ बदलाव करना है तो सरकार बदलाव करे, संसद बदलाव करे, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन अपने आप को ही वो रिव्यू करने को तैयार है, एक बड़ी बात है, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मित्रों, फिर राज्यसभा के उम्मीदवार के बारे में आपकी खबरें थी कि जो आप पार्टी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं, घोषित कर दिए गए हैं राज्यसभा के सदस्य, और हमारे जो मिनिस्टर हरदीप पुरी जी वो भी घोषित कर दिए गए हैं। तो ये निर्विरोध कैसे चुने जाते हैं, बेहतर होगा कि आप राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। मैं आपको केवल ये बता दूं कि जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वो वोट देते हैं, जो राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं, और इनके जो वोट भी देते हैं तो उनका जो वोट होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जिस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके लिए मतदान करते हैं, इसलिए जब कैंडिडेट खड़ा किया जाता है तो उनको मालूम है कि किस विधानसभा में हमारी पार्टी के कितने एमएलए हैं, तो कौन जीतेगा यह बिल्कुल क्लियर होता है। तो इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो निर्विरोध से ही हो जाते हैं, इसकी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। मित्रों, अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर जिसके लिए वक्त ज्यादा नहीं है। मैंने दलित नेतृत्व की बात कही थी, अभी गुजरात चुनाव में आपने देखा कि दलितों का मामला एक बार फिर से उछला और अभी जो कोरेगांव में जो गोरेगांव हुआ है मामला, उसकी वजह से फिर से ये इशू बहुत ही तेजी के साथ उभरा है। मैं आपको मित्रों केवल तीन बिंदु देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। दलित नेतृत्व, निश्चित रूप से समाज में अभी भी दलितों की स्थिति बेहतर नहीं है। कल मैंने जातिवाद के बारे में बात की थी और बहुत जरूरी है कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, नो डाउट, न केवल मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर बल्कि संवैधानिक आधार पर भी। अब ये काम ठीक है, समाज अपने ढंग से करेगा, कानून अपने ढंग से करेगा, संघर्ष चलते रहेंगे, लेकिन जो दलित राजनीति है, जो नेतृत्व है, वो इसको बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकता है। तो दलित नेतृत्व की जो तीन सबसे बड़ी जो विशेषताएं होनी चाहिए जो इस समस्या के समाधान में बहुत ही कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं, वो मित्रों पहला तो यह है कि जो दलित नेतृत्व है वो विरोध पर आधारित न हो कि सवर्णों का विरोध करना है, फलाने का विरोध करना है, उच्च वर्ग का विरोध करना है, मध्यम वर्ग का विरोध के बजाय वो संघर्ष का रास्ता चुने। वो अगर नेतृत्व संघर्ष का रास्ता चुनता है तो उससे उसे अपने लक्ष्य को पाने में ज्यादा आसानी होगी। दूसरा यह है कि वो थोड़ा सा लॉजिकल बने, तर्कयुक्त हो। जैसे आरक्षण के ही मामले को ले लीजिए तो आरक्षण के मामले को अब तर्क पर आधारित बनाया जाना चाहिए, वो अभी पूरी तरह से जाति पर आधारित है। तो इसमें भी एक ऐसा वर्ग उभर करके आ गया है जिसे लगातार इसका लाभ मिल रहा है और जो वंचित वर्ग है वो अभी भी वंचित ही बना हुआ है। तो तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को सोचे। और तीसरा यह कि जब दलित नेतृत्व अपने समाज के विकास के बारे में सोचता है तो संपूर्णता के साथ सोचे। संपूर्णता के साथ का मतलब है कि केवल एकांगी पक्ष नहीं कि ये होना चाहिए, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं या संविधान ने ये किया है। डेफिनेटली वो तो अधिकार है ही और उसकी मांग तो होना ही चाहिए, उसके लिए संघर्ष लाजमी है, लेकिन वो देखे कि वो समूह अपने अंदर ही किस तरह के सुधार कर सकता है, उसे अपने अंदर भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ जो संवैधानिक प्रावधान जो लागू नहीं किए गए हैं या जिन्हें लागू करने में कमी रह गई है या जिसे लागू करने में आनाकानी की जा रही है, उनके लागू करने के लिए वो संघर्ष का रास्ता बिल्कुल अख्तियार कर सकते हैं। तो मित्रों, दलित नेतृत्व को लेकर के तीन मैंने महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को दिए हैं, इन पर आप लोग अपने तरफ से विचार करें और बेहतर होगा कि इस पर थोड़े से पॉइंट्स भी तैयार कर लें, खासकर मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का जहां तक सवाल है, मैं काफी क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं ईमेल पर आता हूं, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे एक मेल मिला है सुनील कुमार यादव का, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने अभी यूपीपीएससी की अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा क्वालिफाई की है और अब वो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। तो सुनील, आपको मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, आपके बैच के विद्यार्थियों की ओर से और अपनी ओर से और डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुख्य परीक्षा के बाद जब साक्षात्कार में जाएंगे तब बहुत अच्छी सफलता वहां अर्जित करें। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दिव्या, पुष्पेंद्र मिश्रा, महेश कुमार तिवारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अभिजीत विश्वास दिनहरा वेस्ट बंगाल से, शाश्वत अग्रवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से, यश सोलंकी अहमदाबाद गुजरात से, राम राज मीना, प्रियंका सिन्हा दुमका झारखंड से और राजेश कुमार चंडीगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।